Για μου πάρω τέλο. विठला पांडुरंगा हरिबो बैठो
हरि ओ
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णुरुरुक्रमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि हितं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तार हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्सुष्टुवासस्तनु भीवृक्षेमहि देवहितं यदायुः
हरिः
हम मंगलमय सुने मंगलमय बोले मंगलमय सोचे और परम मंगल स्वरूप परमात्मा की सत्ता से हम मंगलमय देखे ये ऐसा है दोष दर्शन करके अपने दिल को खराब ना करें। दर्शन का मन में असर पड़ता है और मन का स्व पे असर पड़ता है। कबीर जी ने कहा संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तुकाराम जी एकनाथ जी महाराज कहते हैं समर्थ रामदास भी कहते हैं समर्थ रामदास कहते राजे महाराजे झाले पुनी होत कोई सायुज्य मुक्ति दे नार नाए। सायुज्य मुक्ति जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिला है बंधनों से मुक्त होने के लिए। राजे महाराजे बेचारा वो काम तो नहीं कर सकते, प्रयत्न पूर्वक संतों का संग करना चाहिए। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते पार्वती सहित सत्संग सुनते। ऋषि मुनियों के आगे भगवान शंभ सदाशिव उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परात पर की कथा वार्ता तत्व ज्ञान की करती। भगवान राम के गुरुदेव से जब शिव जी मिलते तो भी सत्संग करते। भगवान रामचंद्र जी के यहां भगवान शिव जी गए, राम जी ने खूब आदर सत्कार किया और शिव जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते। तो भगवान राम कहते हैं कि हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौली, अयोध्या में सब कुछ है आपकी कृपा से, एक चीज की कमी है, राम मांग लो। प्रभु मुझे हमें आपसे एक ही चीज मांगना है, अयोध्या में धन धान्य संपदा सुख ये सब है, ऐहिक सुख तो सब है, घर को लोग ताले नहीं लगाते, वर्षा नियमित होती है, धन धान्य में पूर्ण है, लोग दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करते आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से लोग सत्य प्रिय है, इसलिए प्रकृति की संपदा भी बहुत है। हमको आपसे कुछ एक चीज लेना है, राम जी मांग लो। बोले हे उदार आत्मा भगवान शंभ सदाशिव, हमें आपसे ऐसी चीज मांगनी है ये आपके सर्प तो हमारे अयोध्या में नहीं चाहिए, आपका वागंबर आपके पास रहे, बभूत भी आपको शोभा देती है, हम तो कोई ऐसी चीज मांगते हैं जिसको देकर आप भी प्रसन्न होंगे और पूरा अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। राम जी मांगो ने इतनी भूमिका क्यों बनाती हो, क्या कोई बड़ी चीज है क्या, तुम्हारे को मैं ना बोलूं ऐसी कोई चीज मांगोगे क्या, तुम जो मांगोगे मैं हाँ बोलने वाला हूं, भूमिका मत बनाओ श्री राम। राम जी कहते प्रभु आप व्यासपीठ पर सत्संग मंच पर एक वर्ष तक विराजमान हो रहे और अयोध्या वासियों को युग युगांतर काल कालांतर की भगवत चर्चा कथा इतिहास पुराण के द्वारा उनकी बुद्धि के दोष दूर होकर बुद्धि जिस बुद्धिदाता से सत्ता पाती उसमें उनकी स्थिति हो जाए ताकि मेरे अयोध्या वासियों को मोक्ष सुख मिले, आत्म सुख मिले, जिस सुख में महादेव आप रमण करते हैं मेरे अयोध्या वासियों को मिले। शिव जी प्रसन्न हुए कि ऐसा राजा तो धरती पर राम ही है जो प्रजा को आत्म धन दे दे, मरकर छोड़ने वाला धन तो कई लोभी बाप अपने बेटे को देते और राजा अपने पुत्र को देते, मरने मर कर छूटने वाला धन तो संभाल संभाल कर सारा संसार मर रहा है, लेकिन राम तुमने सत्संग का धन दिलाकर लोगों को अमर पद जो संपदा दी, राम तुम्हारा हमारा संवाद सुनने वाले की पुण्याय का क्या वर्णन कर, साधारण मनुष्यों को पता ही नहीं राम कि ये मनुष्य शरीर और उसकी बुद्धि मिली है अमर सुख पाने को, अमर ज्ञान पाने को, अमर पद पाने को, निगुरे और सत्संग रहित लोग मरने वाले शरीर को मैं मानते और मिटने वाली चीजों को मेरा मान मानकर थक कर निराश होकर मर जाते और कई निज योनियों में भटकते रहते। श्री राम राजा हो तो तुम्हारे जैसा हो, प्रजा का धन धान्य कायदा व्यवस्था तो संभाले, लेकिन प्रजा का मरने वाले का शरीर का अमर पद को जागरण कर दे ऐसा सत्संग प्रजा को मिले, राम जी तुम धन्य हो और मैं एक वर्ष अयोध्या में रहूंगा और नित्य प्रति सत्संग करूंगा। बजा लो ताली, अपना शौक पूरा करो। भगवान शिव जी ने सत्संग के द्वारा अयोध्या वासियों में ऐसी पुण्याई भर दी, अयोध्या वासियों की जो व्यक्ति में जो योग्यता है वो एक हिस्सा ही विकसित हुआ है, बाकी सब सुषुप्त पड़े 99,999। शिव जी के उपदेश से, योग के अभ्यास से, जैसे कंठ को दबोच के पेट को अंदर करके योनि को सकोड़ के प्राणायाम करते तो असाध्य बीमारी और अकल्पनीय सामर्थ्य आने लगता है 40 दिन के अंदर। तो यह आज का आदमी करेगा नहीं तो बताएं कब तक, लेकिन वो जमाने में लोग करते थे और शिव जी ने बताया। स्थूल शरीर पर अधिकार, मन पर अधिकार, बुद्धि पर अधिकार, चित्त पर अधिकार, लेकिन बाहर की वस्तुओं पर भी संकल्प मात्र से उनका रूपांतर करना, वृष्टि करना, इस प्रकार की दिव्य अधिकार मनुष्य के अंदर बीज रूप में छुपे। आजकल पाश्चात्य जगत का ये 1000 वर्ष की गुलामी से ऐसा मानसिकता होगी कि पढ़ो लिखो नौकरी ढूंढो बेचारे युवक, जो जीवन जो बुद्धि आत्मा ब्रह्म और अपनी दिव्य शक्ति लगाने में चाहिए उसी बुद्धि को लोहा सीमेंट कंक्रीट डिजाइन ईंट जमीन सॉल लोहे लक्कड़ में बुद्धि लगाकर इंजीनियर बन गए, बस वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, हर मास को ही चेक करते करते डॉक्टरी जीवन पूरा हो गया। वायरा भारत की क्या स्थिति थी, इस भारत में ऐसे से महान आत्माएं थे गृहस्थी कि जिनका दर्शन करके देवता अपना भाग्य बनाते थे। इंद्र पर जब असुरों की चढ़ाई होती तो भारत के राजाओं की सहायता स्वर्ग का राजा मांगता, खटवांग राजा ने सहायता दी इंद्र को। ऋषभदेव के पुत्र ऋषभदेव को राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव को अपनी कन्या दी इंद्रदेव ने, ऐसी भारत भूमि। लेकिन आज कूड़ करो कपट करो कैसे करो पास हो जाओ, पास होकर नौकरी करो बदली करो सदली करो जीवन पूरा हो गया। आय रहो पेट पालू परिश्रमी प्राणी बन गए, फर्क इतना ही रहा कि वो परिश्रमी प्राणी बैल गाय घोड़ा गधा ये 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले, बस मनुष्य की मनुष्यता का महत्व ही भूल गए। मनसा सिवेतिति मनुष्या, मन से जो अपना शाश्वत आत्मा के साथ संबंध जोड़ सके उसको मनुष्य बोलते। जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ती ऐसे मनुष्य की बुद्धि आत्मा परमात्मा को अनुभव करने वाली जोड़ने वाली एक अलौकिक मति गति। जब समय पूरा हुआ श्री रामचंद्र जी जब स्वधाम जा रहे थे तो अयोध्यावासी मायूस हो गए। राम जी ने कहा देखो मैं भी अपनी योग की धारणा से सरजू में प्रवेश करूंगा और वैकुंठ पहुंचूंगा, मर जाएं और लकड़ी से कोई जला दे तो साधारण एक प्रक्रिया है। अरे इस युग में तुम्हारे महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज शरीर चले गए कि नहीं गए, उनका शरीर मिला क्या जलाने के लिए, कैसी योग्यता विकसित की उस संत पुरुष ने। तुकाराम महाराज का शरीर किसी को मिला क्या, मीराबाई का मिला क्या, कैसी योग्यता जगी, ऐसी मन की मानसिक ऐसी योग्यताएं होती जहां शरीर। ऐसे कई मेरे पास भक्त मन जहां चिंतन करता उनका शरीर वहीं प्रकट हो जाता है, कमरे में बंद कर दो ताला लगा दो और फिर उनका चिंतन होता है तो कमरे में देखते है नहीं ताला खोल दो और वो मंदिर में मिलते, ऐसे लोग अभी जीवित है। राम जी भाई उनका नाम है, लालजी महाराज का वो शिष्य था और मेरे को लालजी महाराज ने बताया कि इनको ये घर में कमरे में बंद कर दिया, फिर सुबह खोला है तो भक्ति भाव में आ गए थे, सुबह खोला तो कमरा खाली है लेकिन मंदिर में देखे गए। वो राम जी भाई अब भी हैं, गांधीनगर के पास एक छोटा गांव है, देहाती जीवन जीते। कैसी कैसी योग्यता है मनुष्य में। जब आज का राम जी भाई अथवा तुकाराम महाराज या मीराबाई सशरीर जा सकते, कहीं अंतर्धान हो सकते। तो श्री रामचंद्र जी सरजू में प्रवेश करके वैकुंठ पहुंच जाए, इसमें संदेह करना नालायकी, अपनी लायकत कद्दी वाला है। राम जी ने कहा मैं सरजू में प्रवेश करूंगा, जिनको मेरे साथ आना है स्वधाम आ सकते। अयोध्या वासी सरजू में चल पड़े राम जी के साथ, और एक दो नहीं, अयोध्या वासी कितने लोग होंगे, ऐसा नहीं कि आत्महत्या की, और सशरीर वैकुंठ पहुंच गए। कितनी योग्यताएं मनुष्य में। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र गंगा किनारे चले गए, मौन रहते, मुंह में छोटा सा कंकड़ रखते, 3 दिन में एक बार जलपान करते, फिर भी शोक की और सदगति की चिंता रहती थी। व्यास जी प्रकट हुए, उन्होंने अपना व्यथा सुनाई कि मेरे 100 के 100 बेटे मर गए, पांडवों का एक भी नहीं। व्यास जी ने कहा यह तो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जय। पांडवों का शंखनाद हुआ तो तुम्हारी अक्षुणी 18 अक्षुणी सेना का हृदय फटने लगा, लेकिन तुम्हारे शंखनाद हुआ तो 11 अक्षुणी उनका बाल बांका नहीं हुआ। दुराचार मनुष्य को कमजोर करता है, सत्कर्म और सदाचार मनुष्य को बलवान बनाता है, और उसका संकल्प बल भी इतना ऊंचा होता है कि सर शरीर भी जा सकता है अगर चाहे। ज्ञानेश्वर महाराज सशरीर आनंदी में समाये हुए, समाधि ले लिया ना ज्ञानेश्वर महाराज ने। एकनाथ जी महाराज बाल्यकाल में ही ऐसे अद्भुत प्रज्ञा के धनी थे कि जो सुनते थे याद रह जाता था। एकनाथ ही भागवत पढ़ के देखो उनकी बुद्धि का परिचय। धन्य है महाराष्ट्र के, तूने ऐसे ऐसे संत पुरुषों को प्रकट किया, और धन्य है भारत भूमि के जहां तहां ऐसे आत्मरत्न मिलते जो अभी भी महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में लाखों लाखों आदमी सत्संग सुनकर अपना यह लोक सुख शांति में करते और परलोक का पासपोर्ट तो बना ही लेते हैं। नानक जी कहते हैं जे को जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद संभाले। बड़े में बड़ी दुखदायी घड़ी है जब सारा जीवन जिसको संभाला वो सब छोड़कर मरना पड़े, वो औखी घड़ी, और फिर अनाथ होकर जीव भटकेगा। उस समय सद्गुरु का सत्संग और मंत्र तुम्हारी रक्षा करके दुर्गति से और सदगति कराने की ताकत रख। बोले महाराज जी हम कैसे मान ले, आजकल का देखो हल्की बुद्धि का जमाना है, तो मेरे को तर्क पैदा करके उत्तर देने को अच्छा लगता है। सत्संग सुना, थोड़ा बहुत सेवा किया, और सेवा में जरा बदमाशी किया तो गुरु ने श्राप दिया कि तू चमार के घर का भिक्षा ले आया, मूर्ख मुझे खिलाया, जा तेरा दूसरा जन्म चमार के घर। वो व्यक्ति जब मरा दूसरा जन्म उसका रघु चमार के यहां हुआ, लेकिन सुना हुआ सत्संग और किया हुआ जब अगले जन्म का प्रकट हुआ, 10 साल की उम्र में इतना प्रभाव कि संत तुलसीदास रघु चमार का बेटा, वो जमाने में जात पात का बड़ा छूत छात का प्रभाव था, अभी तो नहीं। तुलसीदास जैसे उच्च कोटि के प्रसिद्ध संत रघुचमार का घर पूछे तो कहीं चले। और रघुचमार का बेटा रहीदास मरे हुए बैल का चमड़ा उतारने में अपने बाप को मदद कर रहा था। और रहीदास में तुमसे मिलने आया, रहीदास भाव विभोर हो गए और तुलसीदास को आलिंगन कर लिया। तुलसीदास के सफेद कपड़े पर मरे हुए बैल के रक्त रक्त का धब्बा लग गया। फिर भी तुलसीदास ने बुरा नहीं माना, क्योंकि अगले जन्म का सत्संग सुना हुआ है, साधना किया है और अभी जागृत हुए है। जैसे बीज बो देते और प्रकट होता है, ऐसी तुम्हारी भक्ति प्रकट हुई तो मैं दर्शन लेने को आया। हमारा भी कुछ क्या पता होगा, हमारा जन्म होने को था। हमारे पिताजी 6,500 एकड़ जमीन, तो बड़ा जमींदारी हुई कि नहीं हुई। अब उसको पैसे की क्या जरूरत है। मेरा जन्म होने वाला है, उसके पहले एक सौदागर आया और झूला दे गया। सौदागर, हम नहीं लेते दान का, हम क्षत्रिय है, हमारे को कोई कमी नहीं। बोले, हमको रात को स्वप्न आया तुम्हारे घर कोई बालक आने वाला है, हमको तो पता नहीं। वो जमाने में प्रसूति ग्रह नहीं थे, दाइयां आती थी घर में प्रसूति कराने को। आज से 60-65 साल पहले की बात। तो कैसे भी करके वो सौदागर झूला दे गया। ऊपर बोले, रात को स्वप्न आया है। वो कैसा, अगले जन्म का थोड़ा हमने सत्संग सुना होगा, कुछ भी किया होगा, हमको तो पता नहीं। लेकिन वो कैसा हमारा भगवान ध्यान रखते, प्रकृति का संचालक, सौदागर के द्वारा बढ़िया झूला भेजते। और पहले घर में झूला आता है बढ़िया, और बाद में हमारा जन्म होता है। कर्म की गति और सत्संग की महिमा में आपको क्या बताऊं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े और कृष्ण से पूछते कि माधव, मैं जानता हूं कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तृत्वम् कृतम् कर्म शुभाशुभम्। शत कोटि युग बीत जाए, कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन माधव, मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, अगले जन्म का मैं ध्यान करके देखा, अगला तगला करके 72 जन्म का मैंने ध्यान करके देखा, ऐसा कोई मेरा कर्म नहीं कि मेरे को बाणों की सैया पर 58 दिन शयन कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म जी, 72 जन्म तक रिवर्स ध्यान किया, तुम एक जन्म और देख लो। आज से ठीक 73वें जन्म में तुमने 14 साल की उम्र थी, जंगल में विचरण करने गए। आंकड़े के पत्ते पर हरे रंग का पंख वाला जो जंतु होता है उसको पकड़ा और उसको बबूल के काटे बोल गए। ये 73 जन्म पहले का किया हुआ कर्म तुमको अभी मिल रहा है ब्याज से। व्यास जी भगवान ने पीड़ा सुनी कि मेरे 100 बेटों को मैंने आखिरी में देखा सुना नहीं, करण की आवाज मैंने सुनी नहीं, मेरे दुर्योधन कैसा भी है लेकिन पुत्र है ना। व्यास जी ने कहा अच्छा। बोले, बहुएं भी फुट फुट के रोती है। व्यास जी बोलते, चिंता ना करो, तुम्हारी बहुओं को और कुटुंबियों को बुला दो, मैं प्रतिपदा कहता हूं फलानी तिथि को, और संध्या के समय में गंगा जी में प्रतिस्मृति विद्या के बल से तुम्हारे स्वर्ग में गए हुए सभी योद्धाओं को बुलाता हूं और तुमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। व्यास जी ने बुलाया। जैसे कुंभ के मेले में साधु गंगा जी में से नहाकर बाहर आता और खलबली आवाज होता है, ऐसा खलबली आवाज सुना किसने, सूरदास धृतराष्ट्र ने, कुंता जी ने देखा। और वो सब योद्धे आए, शाम को आए, रात भर मिले जुले वार्तालाप किया। गए थे जो वेशभूषा में, वही वेशभूषा की आकृति में आए, लेकिन कानों में कुंडल स्वर्ग की खबर दे रहे थे और हृदय में प्रतिशोध नहीं था, स्वर्गीय शांति थी। सुबह हुआ धृतराष्ट्र को, गांधारी को, कुंता को कहा अब मुझे इनको भेजना होगा। तो जिन योद्धाओं की पत्नियां उनके लिए विलाप कर रही थी, बेटियां तुमको भी जाना है तो मैं तुमको भी इनके साथ पतिलोक में भेज दूंगा। जो पत्नियां पतिलोक में जाना चाहती थी उनको भी व्यास जी ने सम्मति दी और सूर्य उदय होते होते गंगा में प्रवेश किया और सब स्वर्ग में पहुंच गए। आज की साइंस इस बात को कपोल कल्पना कह सकती, क्योंकि इसकी मति गति उस आध्यात्मिक जगत से वंचित है। लेकिन यह है, मैं एक ऐसी संत बाई को जानता हूं जो अभी जिंदी है, हयात है, 138 साल की उसकी उम्र है। मैं जब साधना करता था तो मेरी गुफा के पास में उसकी गुफा थी, आबू में नल गुफा मेरी थी और लाल गुफा उसकी थी। वो बाई को लाल गुफा वाली बाई बोलते, अभी भी वो बाई जीवित है, 138 साल की उम्र है। उसने बताया कि मैं जब बद्रीनाथ में साधना करती थी तो एक दिन आकाश मार्ग से साधु उड़कर भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने को आए, तो आकाश मार्ग से पहले तो सुना था हनुमान जी उड़े थे, लेकिन ये देख के सारा बद्रीनाथ का बाजारे बंद हो गई। और वो पूछा गया साधु से, कहाँ से आए महाराज? बोले हम गंगोत्री से आए, घूम के बसों में, तो तुम योग बल से इधर आए। तो ये सब विद्याएं हैं और एक से एक विद्या है। मनुष्य जीवन बड़ा लचकीला है, जितनी भी उन्नति कर सको सारी सुंदर व्यवस्था है और वो भारत में है। भगवान नाम सुमरण, संत दर्शन, श्रद्धा, ये आपका जो धन है वो धन रुपए पैसों से मापा नहीं जा सकता। इस धन को संजोए रखना, बढ़ाते रहना, जैसे गाय माता चारा खाती है फिर जुगाली करती है, पचाती है, जो कुछ तुमने सुना उसको विचारते रहना, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को प्रसन्न रखना, किसी को ऊपर से ही बुरा अच्छा होता है, गहराई में तो एक सत्ता है, किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, किसी को गहराई से बुरा मानना नहीं, व्यवहार में जैसा हो सावधानी से व्यवहार करना, लेकिन लक्ष्य ये रखना कि ये शरीर मुसाफिर खाना है, ये शरीर का सत उपयोग है, सत्य स्वरूप अपनी आत्मा को जान। शरीर से जो करो उस आत्म प्रसाद को पाने में सहायक होना चाहिए, मन से जो सोचो वह भी आत्म जागृति के लिए होना चाहिए, बुद्धि से जो निर्णय करो वो भी आत्म जागृति वाला ही करो। अपने को बेहोश करके आप कितना भी पा लेंगे उसकी कीमत क्या, और अपने को होश में लाने से आपके पास कमी क्या रह जाती। पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, अपना होश आ गया, मैं ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के बाद भी मैं रहता हूं, मैं क्या हूं, मैंने अपना होश संभाला तो मेरे को क्या कमी रही आप बताओ। कोई धन की कमी, कोई मकान की कमी, किस बात की कमी आप मेरे को कुछ, मैं ढूंढता हूं कौन सी कमी। ऐसा खजाना आपके पास भी है। आपको लगता है मेरे पास कोई कमी है, मैं कोई पोथियां पढ़ पढ़ के अथवा किसी से सीख सीख के आकर बोलता हूं, ऐसा है क्या? अरे जिसने अपना आत्मा का खजाना पाया उसको रटा रटी नहीं करनी पड़ती। दूसरे लोग पुस्तकें रट रट कर भी लिख लिख कर भी भाषण ऐसा नहीं बोल सकते जो सत्संग हो जाए। हम तो बिना लिखे बिना पढ़े ऐसा बोलते कि सत्संग हो जाता है, आप सब देख रहे। जिसको परमात्मा प्रसाद मिलता है उसको बाहर की टॉनिके खाकर स्वास्थ्य नहीं बनाना पड़ता है, अंतर आत्मा की प्रसन्नता और खुशी आनंद भी उसकी महाटॉनिक उसके साथ रहती।
और जिसको आत्म सुख मिलता है उसे क्लबों में जाकर अथवा रोक और पॉप म्यूजिक आजकल युवक युवतियों की सत्यानाश हो जाती है। मैं तो मीडिया वालों को कहूंगा कि देश का भला चाहते हो तो रोक और पॉप म्यूजिक से हमारा युवा धन नष्ट हो रहा है, उसको बचा। और प्रजा ऐसे मीडिया वालों को धन्यवाद दे, ऐसे मीडिया वालों का आदर करे जो हमारे युवा धन की सत्यानाश होने से रोकने की बात लिखती है। वो अखबार नहीं, हमारे लिए शास्त्र है। जयराम जी की शस्त्रातिति शास्त्र, जो हमारे को गिरने से युवा पीढ़ी का पतन होने से अनुशासित कर दे, वह अखबार हमारे लिए शास्त्र है। जयराम जी की बोलना पड़े। शस्त्रात इति शास्त्र, जो हमको पतन से अनुशासित कर दे, बचा ले, वो हमारे लिए शास्त्र है। विदेशों के कई आंकड़े बताऊं, ये तेज आवाज ध्वनि युवक युवतियों को कानों का और मस्तक का आगे चलकर पेशेंट बना देंगे। और झूम झाम के और खड़े खड़े पीने खाने से पैरों की पिन्नियों की बीमारी दे देंगे। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं हमारे, जो भी भारतवासी बेचारे इस रॉक और पॉप म्यूजिक में झूमते उनकी संतानें कमजोर होगी, तो भारत की कमर कमजोर होगी, इसकी मुझे पीड़ा। और मेरी पीड़ा को जो मीडिया अपनी पीड़ा मानती है, मैं तो कहूंगा वो अखबार नहीं, मेरे लिए तो शास्त्र है। भारतवासियों की कमर तोड़ कार्यक्रम से रक्षा करें, फिर युवा धन पुस्तक का अभियान करने वाली समितियां भी मेरे लिए आदरणीय है। मैं आपको मेरे गुरुदेव की बात बताता हूं। 10 महीना मेरे गुरुदेव लोक मांगल्य करते, 2 महीने हिमालय के नैनीताल के जंगल में रहते, फिर भी उस महापुरुष का हृदय कितना करुणा से भरा था। कैसे संत पुरुष है, उनके चरणों में मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। मेरे गुरुदेव के चरणों में और एकनाथ जैसे संतों के चरणों में हम जितना प्रणाम करते उतना कम है। उन्होंने कितना मंगल किया समाज का। युवा धन पुस्तक जैसी पुस्तकें, महान नारी जैसी पुस्तकें, पुरुषार्थ परम देव जैसी ऐसी पुस्तकें इकट्ठी करके गठरी बनाते, सिर पे उठाकर 80, 82, 84 साल की उम्र पहाड़ से नीचे उतरते, गांव में जाते, लोगों को पुस्तक देते, 15 दिन के बाद वहां से लेते कहीं से हफ्ते के बाद, ऐसा करके लोगों के घर सत्संग पहुंचाते। और ये पठ्य तो इधर लिखते हैं और लोग फिर उस अखबार को शास्त्र की नहीं संभाल के रखते, तो ये कितने भागशाली हैं बच्चे बेचारे कि इनकी लेखनी सत्संग लेकर लोगों को घर बैठे सेवा कराती, जो मेरे बापूजी सिर पर उठा कर ले जाते थे, इन पठ्यों की कलम से घर बैठे सत्संग पहुंच जाता है। इन सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। आपको मैं मस्का नहीं मारना जानता हूँ, नेताओं जैसी भाषा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हृदय की ये सद्भावना है। इसकी कीमत रुपए पैसों से नहीं होती, संत के हृदय की सद्भावना जिन बच्चों ने कमाई है, जिन पत्रकारों ने, अखबारों ने, एडिटरों ने, उनका असली धन है। आत्म संतोष और भगवान के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की जो सेवा है वो शाश्वत फल देने वाले। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति। रविंद्रनाथ टागोर जापान में गीता पर सत्संग कर रहे थे, एक व्यक्ति रोज उनके सामने बैठता और एक टक देखता हूं, महापुरुष आए उसके पहले आके बैठते और संत पुरुष जगह छोड़े उसके बाद वो जगह छोड़ता था बूढ़ा, और रोज गुलाब का हार एक चरणों में अर्पण करता था। बस आज पूर्णाहुति होने वाली है तो लोगों ने कवर में यन दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने चांदी का, किसी ने कोई गिन्नी विन्नी जो भी दक्षिणा रखा। उस बुड्ढे ने वही हार रखा और एक टक देखते देखते उसकी आंखों से पानी आने लगा। रविंद्रनाथ टागोर पूछते कि व्हाट यू वांट, उसने बोला आप कल जापान में रहने वाले, मेरा स्मॉल हाउस, इंडियन पर्सन से मेरा झोपड़ा, आप मेरा झोपड़ा पावन करें। टागोर जी मना ना कर सके, बोले आना लेकिन ज्यादा खर्च वर्च नहीं करना, ज्यादा भीड़ नहीं करना, मैं आता हूं कल 4 बजे। कल 4 बजे के पहले रॉयल्स रॉयस गाड़ी को दुल्हन की नाई फूलों से सजाकर वो व्यक्ति लाया। टागोर ने अपने सेवक को बोला कुछ येन रख लो, ये गरीब आदमी कहीं भाड़े की गाड़ी लाया होगा, इसके बच्चों को दे देंगे पैसे। गाड़ी में बैठे, बम्बई में गाड़ी आई थी कुछ वर्ष पहले, टैक्स वैक्स पेड करके 1,30,00,000 की बनी थी रॉयल्स रॉयस गाड़ी। एक पहाड़ी पर बड़े बिल्डिंग में का दरवाजा खुला, दरवाजे वाल अच्छे प्रभावशाली वर्दी वाले जैसे राजपाल के यहां होते ना चौकीदार, ऐसे प्रणाम किया, टागोर को ले गए। बड़ा हॉल था, सारा फर्नीचर हटाया हुआ था, वो गलीचे बिछे थे, सोने की एक कुर्सी थी, बाकी के लोग नीचे बैठे और रविंद्रनाथ की आरती की, देखते देखते टिपाइयां लग गई। 50 प्रकार का सूखा मेवा, ताजा मेवा, अलग अलग मिठाइयां, 56 भोग होगा, 50 लिखा तो 50 है, मुझे लगता है शायद 56 भी हो। ठाकुर जी को एक बड़ा कवर बड़ी बड़ी नोटों का रखा। टागोर जी बोलते ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले आओ, तुम अपने झोपड़े में ले चलो ना। तब उस बुड्ढे ने कहा हाली बहन, संत पुरुष ये आप ही का घर है, ये मेरे बेटे हैं और ये बेटों की माँ है, ये मेरा सेक्रेटरी है, ये मेरा फाइनेंस मैनेजर है, ये दूसरा फाइनेंस मैनेजर है, मेरे पास सो मच प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बहुत सारी मेरी अपनी अपनी कॉलोनियां है, फाइनेंस का भी करता हूं, बहुत बिजनेस है। ये तो सूती कपड़ा पहनते हो और ऐसा गरीब लगते हो। बोले महाराज कॉटन हेल्थ के लिए है, सूती कपड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित हुआ है, ऊनी और सूती, सिंथेटिक कपड़ा स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक साबित हुआ है, तो ये पहनता हूं। तो तुमको इतना धन है, करोड़ों अरबों अरबों रुपया, तो तुम इतने सादे रहते हो। बोले महाराज मैं ये गाड़ी किराए की नहीं लाया, मेरे पास ऐसी गाड़ियां बहुत है, 7 तो रॉयल्स रॉयस है, 7 रॉयल्स रॉयस, ड्यूक गाड़ी, अदर गाड़ी, आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता। और ये सोने की 2 चेयर बना रखी, आप जैसे कोई संत आते ना इंडिया से तो कभी एक के बदले 2 आ गए तो 2 काम है, नहीं तो बेसमेंट में पड़ी रहती। महाराज ये हम तो क्या बदला चुका है, आप तो देते मरने के बाद भी चले और हम तो देते जो यहां रह जाए, फिर भी कुछ न कुछ दिए बिना हमारा जी नहीं मानता, इसलिए आपका हम स्वागत करते, बाकी आपने जो दिया है महाराज। टागोर का हृदय प्रसन्नता से भर गया कि धन वही शोभा देता है जहां आत्मज्ञान का आदर है, धन वही शोभा देता है जहां आत्मज्ञान का आदर है, जहां ज्ञान का आदर नहीं वो धन सत्यानाश करने वाला होगा। 3 चीजें बड़ी खतरनाक है और बड़ी हितकारी। धन बड़ा खतरनाक है, जुआनी बड़ी खतरनाक है और आरोग्य बड़ा खतरनाक है। अगर रोक और पोप में लग गए धन यौवन और आरोग्य तो सत्यानाश कर देगा, लेकिन ये धन आरोग्य स्वास्थ्य सत्कर्म और सत्संग में लग गया तो 7 पीढ़ी तारेगा और देश का भी मंगल करेगा, मानवता का मंगल। आपके पास जो चीज है उसका सत उपयोग। यूनिवर्सिटियां कॉलेज बनते अच्छा है ठीक है, लेकिन उसमें से डॉक्टर वकील इंजीनियर सर्वेंट उद्योगपति निकलेंगे। अगर उनके जीवन में सत्संग नहीं होगा तो सब एक दूसरे को कैसे भी पटाकर खींचम खींची करेंगे, शांति से मानवता दूर चली, आध्यात्मिक सुख से मानवता दूर चली जाएगी। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं होगा, परस्पर हित की भावना नहीं होगी, परस्पर भावयन तो नहीं होगा, तो मनुष्य मनुष्य का वैरी बन जाएगा, मनुष्य मनुष्य का शोषक, और मनुष्य मनुष्य के लिए ऐसा ऐसा अपराधीकरण करेगा कि संसार नरक बन जाएगा। अगर सत्संग मिलेगा तो पढ़े लिखे लोगों के हृदय में भी मानवीय संवेदनाएं जागेगी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, मानवीय संवेदना नहीं है, वो शासक बनेगा तो विलासी बनेगा, शोषक। जिसके जीवन में अच्छे संस्कार हैं, वो चाहे पत्रकार बनो, चाहे शासक बनो, चाहे दुकान वाला बनो, चाहे मिनिस्टर बनो, कुछ न कुछ उसके द्वारा मानवीय मांगल्य के कदम उठेंगे जिससे मानवता महकेगी। मैं फिर से आप सभी को शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपका तो मंगल होगा, आपके संपर्क में आने वाले को भी कुछ तो आपके आचरण से सद्भाव मिलेगा। धरती पर तीन तरीके हैं काम कराने के, एक तो कत्ल के बल से, डंडे के बल से, आतंक के बल से, करो नहीं तो फिर गोली लगा देंगे। दूसरा काम कराने का तरीका है कि ऑर्डर इज द ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून के बल से। कत्ल के बल आतंकवाद और कानून के बल राजनीति, ये आपस में लड़ते लड़ते थक जाते, युगों से चलता रहता है। तीसरा तरीका है परस्पर भावयंत्र, एक दूसरे का मंगल करो, एक दूसरे के उपयोग में आओ, एक दूसरे का सहकार करो। अभी जो मानवता टिकी है वो परस्पर भावयंत्रों से टिकी है। दैत्यों ने पूछा कि ब्रह्मा जी, भगवान का अवतार होता रहो, हमारे कोई नीचा दिखाते और देवताओं को मदद करते, हम तो सभी भगवान के, फिर इतना पक्षपात क्यों? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दैत्य, इनकी बुद्धि में असली बात उपदेश से नहीं आएगी। बोले फलानी तिथि को मैं तुम्हारा डिनर रखता हूं, डिनर शास्त्र में नहीं लिखा, मैंने मिलाया है, भोजन समारंभ, दैत्य भी आना और देवता भी आएंगे। दैत्यों ने देखा कि देवताओं को खिला पिला के जो बचेगा उनको मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी के यहाँ ऐसा नहीं, देवताओं का पसंद मनपसंद भोजन अलग से बना, दैत्यों का मनपसंद भोजन अलग से बना। और दैत्यों को बोला बेटे पहले तुम खाओ, ऐसा नहीं लगे कि पहले देवता को खिलाते। कतारें लग गई, पत्तले बिछ गई, और दैत्यों को जो व्यंजन पसंद थे, आए चरपरा, मिर्च, मसाला, तीखा, भुना, ए तला, उस प्रकार का व्यंजन दैत्यों के मुंह में पानी आ गया। जैसे शराबी को क्या क्या लगता है आप समझ गए, ऐसे दैत्यों को क्या क्या लगता है, अच्छा ऐसा रसोईयों से बनवाया। दैत्यों को कहा ब्रह्मा जी ने कि जब तक तुम पंगत में बैठते हो, भोजन करके नहीं उठते हो, तब तक मैं संकल्प करता हूं तुम्हारे हाथ की जो कोनी है वो अभी तो मूर्ति है, सीधी रहेगी, और सीधी कोनी करके अपना भोजन पा लो, अब हाथ मुड़ेगा नहीं, भोजन कर लो तब तक। अब दैत्य तो बाबा दैत्य रहे, उठाया और फिर अब ये तो मुड़ना नहीं थे, बराबर निशाना ताक के यूं छोड़े तो भी मुंह में आए तो थोड़ा सा नाक में घुस जा, कभी आंख में आए, मिर्ची तेज चटनी है, क्या खबर, आंखों में पानी, आंख लाल टमाटे जैसे, नाक से पानी आ रहा है, मुंह में भी पानी है, स्वादिष्ट भोजन, कैसा मुसीबत से भोजन हुआ होगा, आप कल्पना करो, तुम्हारा ऐसा प्रोग्राम हम नहीं रखेंगे। मुश्किल से उठे, बोले अब देवताओं को तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन देवताओं का मन भावन सात्विक प्रसाद पृथ्वी पर का अथवा स्वर्ग का, गौ दूध से बनी हुई खीर अमृत मानी जाती है। रावण सीता को धोखे से ले गया तो रावण के यहां का भोजन सीता जी नहीं करती, इंद्र खीर का कटोरा भेजता था सीता माता को, ऐसा वर्णन आता। तो देवताओं के लिए खीर, ये पूरी, मालपुआ, जो भी कुछ दैव आदि देवी थी। और पत्तलित परोसी गई, देवता पुत्रो जब तक भोजन करोगे तुम्हारी हाथ की कोनी नहीं मुड़ेगी, भोजन कर लो। देवता चुप हो गए, जहां से आंख देखती है वो मन, और जहां से मन सोचता है वह मैं हमेशा। तो जहां से ब्रह्मा जी सृष्टि करने का सामर्थ्य लागते, क्योंकि उन्होंने ध्यान गहरा किया, अंदर का पूर्ण जगह है, तो देवताओं ने कुछ अंश जगाया, तो वो देवता ने उठाया पत्तल से सामने वाले देवता के मुंह में रखा, और सामने वाले ने उठाया आमने रखा, आमने सामने, आमने सामने। कोनी नहीं मुड़ती तो क्या है, मैं तुमको पोषता हूं और तुम मेरे को पोषते, बराबर मजा लिया भोजन का। दैत्य देखते ही रह गए, हाय रे हाय, ये तो हमारे को पता ही नहीं था, लेकिन ये सत्संग के बिना बुद्धि आएगी कैसे, हाय हाय। तो ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, परस्पर भाव यंत्र, मां बच्चे का लालन पालन करे, बच्चे का कर्तव्य है कि माँ बाप को वृद्ध अवस्था में संतुष्ट रखे, उनका आशीर्वाद। बहू सासू का मंगल चाहे और सासू बहू का संतोष चाहे, बेटी माँ का आदर करे और माँ बेटी का मंगल चाहे, एक दूसरे के पोषक बने तो मानवता देवत्व में बदलती है। तू ऐसा एक दूसरे की गलती दिखाकर अपना मन और सामने वाले का मन खराब मत करो, अपनी शक्ति और दूसरे की शक्तियां का सत्यानाश ना करो। आजकल ऐसा चल पड़ा है, पति पत्नी को बोलेगा देख तू ऐसी ना, ऐसा 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 है, वो पत्नी बोलेगी आपने ऐसा किया था, बेटी माँ को बोलेगी, माँ बेटी को, एक दूसरे का नुकस खोज खोज के दिखाएंगे। और मनुष्य की बड़े में बड़ी ये कमजोरी है कि अपनी पहाड़ जैसी भूल भी राई के दाने जैसी दिखेगी, और दूसरे का राई के दाने जैसी भूल भी पहाड़ जैसी दिखेगी। ये मनुष्य की कमजोरी, और सत्संग इस कमजोरी को मिटा देता है तो मनुष्य कितना सज्जन बन जाता है। ये कानून से काम नहीं हो सकता है, जो सत्संग से होता है। डंडे के बल से या कत्ल के बल से समाज का पोषण नहीं होता, शोषण। ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे टैक्स भरो, ऐसा भरो, आप मजूरी कर करके मर जाओ और उनकी तिजोरियों में भरता जाए, ये कानून और कत्ल। और संत रात को सत्संग करके, संत तो अपने पूजा के रूम में गए, सत्संग के समय तीन चोर आए, बोले इधर तो सत्संग लोग करेंगे और एक नाथ के यहां अपन चोरी कर लेंगे। अब वो तो जगह बहुत तो देखा था, ये तो सत्संग में भीड़ है, एक नाथ के कमरे में छुप के सो गए। रात्रि हुई और सामान उठाकर चलने लगे तो आवाज है, आवाज हुआ तो जगे, तो घबराए। एक नाथ ने बोला नहीं नहीं, तुम जिसके लिए आए वो काम तो पूर्ण हुआ, लेकिन घंटों भर तुमने इंतजार किया, गिर जा, भोजन बनाओ। भोजन कराया, रात को आराम कराया और सुबह सारा माल उनको भेज दिया। कानून वाले की ताकत है इतना उदार होना। वो चोरों का दिल बदल गया, मैं कानून के बल से अथवा बनियागिरी के बल से तुम्हारे से दक्षिणा लेके लाख, दो लाख, पांच लाख लेके जाऊंगा, मान लो तो क्या मिलेगा। लेकिन प्रेम के बल से तो मैं तुम्ही को ले जाता हूं साथ में, तुम्हारा शरीर यहां रहेगा लेकिन तुम्हारा दिल तो मैं ले जाता हूं। ये परस्पर भाव यंत्र जो है ना, रुपए पैसों से और कानून से और कत्ल से हजारों लाखों को नुकसान। ये हांगकांग से भागे भागे आए ये दोनों परिवार, कोई अमेरिका से भागा भागा आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया, कोई देहरादून से आया, काय को आते, एक बार उधर सुना अब रहा नहीं जाता, अपने को पोषने को आते। तो तीन तरीके होते, वफाई के दो तरीके है, आजमा के देख ले या बन जा उसी का, न तो उसको अपना बनाकर देख ले। वफाई के दो तरीके, आजमा के देख ले या बन जा उसका, या तो उसको अपना बना के देख ले, या आप अपने स्नेहों के बन जाओ या तो स्नेहों को अपना बनाओ, इससे पोषण होगा, एक दूसरे की कमी ना देखो, सबका मंगल सबका। लोभी धन के लिए रोता है, मोही परिवार के लिए रोता है, अहंकारी पद के लिए रोता है, लेकिन भगवान का भक्त, भगवान और संत और भक्तों के जीवन और वाणी से उस प्रेमा भक्ति के दो आंसू बहाकर अपना जीवन धन्य बना लेते। मीरा कभी रोती और गाती है कि गुरु मिले रहिदास रे जी, 68 तीर्थ संतोरे चरणे, संतोरी चरण रज उड़ी उड़ी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मल्यो है सत्संग, नसीबे मल्यो है सत्संग। अब समर्थ अपनी भाषा में सत्संग की महिमा करते, शिव जी अपनी भाषा में सत्संग की महिमा करते, राम जी अपनी भाषा में सत्संग की महिमा करते, तो मीरा अपनी भाषा में लेकिन सत्संग की महिमा सभी सत्पुरुषों ने और सज्जनों ने स्वीकारी की। परमात्मा करे कि हमारा मन परमात्मा के लिए सोचे, परमात्मा के प्रेम में आनंदित हो, अथवा परमात्मा के विरह में दो आंसू बहाकर पावन हो जाए। भगवान करे कि हम जो कुछ करें उसमें भगवान की ही महत्ता, राग की महत्ता ना हो, द्वेष की महत्ता ना हो, अहंकार की महत्ता ना हो, प्रभु पुकार की महत्ता हो। हे परमात्मा, हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए तू हमारे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए इस विदाई की वेला में, भगवान को प्रार्थना कर लो ना कोई संगी साथी ऐसा, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहते हुए मजबूर हम अकेले चले, तुम ही हमको शमशान में छोड़कर आए, हम अनाथ होकर ना मरे, नाथ तेरा और मेरा संबंध हो जाए, नाथ तेरी और मेरी प्रीति हो जाए, नाथ मेरे विठ्ठल, मेरे माधव, मेरे गोविंदा, माझा गोपाला, माझा अच्युता। माझा केशवा, माझा माधवा, माझी गुरु माऊली, इष्ट देवा। फिरत फिरत प्रभु आयु पड़ियो तो शरणा। अनेक माताओं के गर्भों से भटकता भटकता अभी मनुष्य शरीर में प्रभु तेरी शरण आया। फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए, तू अपनी भक्ति देना प्रभु। मेरे हरि, मेरे मोहना, मेरे माधवा, मीरा कभी विरह से आंसू बहाते बहाते अपना दिल धो डालती है, तो कभी प्रेम से प्रभु प्रसाद उभार कर अपना चित्त आह्लादित करती। दो ही तो साधन है, या तो पिया के प्रेम में प्रेमारस को जगाकर मन को मधुर बनाए, या तो प्रभु के विरह में आंसू बहाते बहाते दिल को द्रवीभूत कर दे। जैसे मोम पिघलती है, उसमें जो रंग डालते उसी रंग की मोमबत्ती हो जाती, ऐसे हृदय पिघलता फिर भगवत भाव उसमें द्रवीभूत होता है। प्रभु हे अच्युता, हे केशवा, हे अंतर्यामी, हे परमेश्वरा, अपि चे दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पापकृतम्। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी तेरे ज्ञान की नाव में बैठता है तो तर जाता, तू कुब्जा को तार सकता, अजामिल को तारने में तुझे संकोच नहीं होता। अनपढ़ ग्वाल गोपियों का तू तारणहार हो जाता। सारे विरोधों के बीच तुकाराम का जय जयकार कराने वाले, हे मेरे गोविंदा, तू 5 साल के ध्रुव को मिल सकता है, 8 वर्ष के रामी रामदास के आगे प्रकट हो सकता है। जो तेरे लिए तड़पता है तू उसको स्वीकार कर लेता। अब आगे संसार ने हमारी भगवान की तड़प छीन ली, संसार के लिए तड़प तड़प के तड़पते ही मर जाते और फिर तड़पते रहते। हम तड़पे तो तेरे लिए, बात करे तो तेरे साथ और चुप बैठे तो तेरे लिए। प्रभु माझा परमेश्वरा, दीन बंधु